आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इसराइल के साथ अपनी मुसलसल दोस्ती की कदर करता है, जो एतमाद, इख्तिरा और अमन तरक्की के तई मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की है कि वो उस तैयारा हादसे की तहकीकत के लिए CBI को हुक्म दे जिसमें नायब वजीर आला अजीत पवार हलाक हो गए थे। भारत ने अफगान इलाके पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की मजम्मत की है जिनमें खवातीन और बच्चों समेत कई शहरी हलाक हुए हैं। ईरान और अमरीका इस महीने की 26 तारीख को जिनेवा में न्यूक्लियर से मुतालिक अपनी बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। और ICC मर्दों के T20 क्रिकेट आलमी कप में अहमदाबाद में सुपर 8 मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से शिकस्त दे दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इसराइल के साथ अपनी मुसलसल दोस्ती की गहराई से कदर करता है, जो एतमाद, इख्तिरा और अमन तरक्की के तई मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत और इसराइल के दरमियान मजबूत रिश्ते और दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात की मुतनव्वे नौइयत के बारे में उनसे इत्तेफाक करते हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो इसराइल के अपने आइंदा दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि इसराइल और भारत के दरमियान रिश्ता दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान एक ताकतवर इत्तेहाद है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मस्नूई जहानत AI से इलाकाई तआवुन तक शराकतदारी लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में बरतानवी आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के मुजस्मे की जगह आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C.राजगोपालचारी का मुजस्मा नस्ब किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम के 131वें नशरिये के दौरान राष्ट्रपति भवन के अहाते में C.राजगोपालचारी के मुजस्मे के नकाब कुशाई का ऐलान किया। अपनी तकरीर में जनाब मोदी ने C.राजगोपालचारी की यह कहते हुए तारीफ की कि वो उन लीडरों में से एक हैं जिन्होंने ताकत को ओहदे के तौर पर नहीं बल्कि खिदमत के तौर पर देखा। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि राजगोपालचारी का तर्ज अमल, जाती तहमुल और अवामी जिंदगी में आज़ाद ख्याली आज भी हमें तहरीक देती है।
राजा जी उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी।
राजाजी उत्सव के दौरान 24 फरवरी से 1 मार्च के दौरान C.राजगोपालचारी पर नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। नई दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि भारत ने जिस्मानी आजा अतिया और मुंतकिल करने के मैदान में एक अहम संगमील तय किया है। जिस्मानी आजा और रेशे की मुंतकली की कौमी तंजीम नोटो ने जिस्मानी आजा के अतिये इन्हें किसी के लिए मुख्तस किए जाने और किसी को मुंतकिल किए जाने के मैदान में मुल्क भर में बेमिसाल पेशरफ्त की है। मुल्क में 2013 में आजा की 5,000 मुंतकलियां की गई थी जबकि 2025 में ये बढ़कर तकरीबन 20,000 हो गई। वजारत ने यह भी बताया कि आजा की तकरीबन 18% मुंतकलियां मुर्दा अतियाकारों के जिस्मानी आजा का इस्तेमाल करते हुए की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने मन की बात प्रोग्राम में जिस्मानी आजा के अतिये की अहमियत का खासतौर पर जिक्र किया था।
इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं।
हुनरमंदी के फरोग और छोटे कारोबार के वजीर मामलकत जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध के जरिए भारत की डिजिटल हुनरमंदी की तहरीक में तेजी लाने के मकसद से बढ़ना है तो यहां जुड़ना है नाम से मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया है। ये AI से लैस ऐसा पहला मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद सीखने के अमल, मुलाजमत और एंटरप्रेन्योरशिप को यकजा करते हुए आसान रसाई, जाती रहनुमाई और 20 भारतीय जबानों में मौकों को यकीनी बनाया गया है। आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इंडिया स्टैक के बाद अब स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसी यकसर तब्दीली लाने वाली पहल के जरिए भारत की डिजिटल ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो उस तैयारा हादसे की CBI जांच का हुक्म जारी करें जिसमें पिछले महीने रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार की मौत हो गई थी। मुंबई में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला फडणवीस ने कहा कि महायुति हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि तैयारा हादसे से मुतालिक सभी शकूक व शुभात दूर हो जाएं। तफसील हमारे नामा निगार से।
वजीर आला फडणवीस ने कहा है कि उन्हें BJP की हलीफ जमात NCP की जानिब से खत मौसूल हुआ है जिसमें इस हादसे की CBI जांच की दरख्वास्त की गई है और इस बारे में उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की है। उन्होंने कहा कि DGCA और रियासती CID की जारी तहकीकात के अलावा CBI की जानिब से भी हादसे की जांच की जाएगी। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मार्गरेट अल्बा ने नई दिल्ली के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पार्टी कारकुनों की जानिब से किए गए मुजाहरे पर तनकीद की है। मुजाहरे के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मोहतरमा अल्बा ने कहा कि इस तरह के मौकों पर जिम्मेदाराना रवैये की जरूरत होती है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान मुबैना तौर पर भारतीय यूथ कांग्रेस के अराकीन समिट में दाखिल हुए और उन्होंने नारेबाजी की। मोहतरमा अल्बा ने मजीद कहा कि बैन अल-अक़वामी तकरीबात के दौरान नज्म व ज़ब्त और वक़ार बरकरार रखा जाना चाहिए और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान बगैर शर्ट के एहतजाज करने पर कांग्रेस के यूथ विंग की सख्त मजम्मत की और कहा है कि इस एहतजाज से ये जाहिर होता है कि मुल्क की ये सबसे कदीम पार्टी नजरियाती तौर पर दिवालिया हो गई है।
दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया साथियों? कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू होगा। 20 मार्च तक जारी रहने वाले इजलास में कुल 15 नशिस्तें होंगी। इस बजट का आगाज गवर्नर रमन डिका के खिताब से होगा। बजट के खिताब को दूरदर्शन और आकाशवाणी रायपुर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगान इलाकों पर पाकिस्तान की जानिब से किए गए फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। रमजान के मुकद्दस महीने में किए गए इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत कई शहरी हलाक हुए हैं। इस बारे में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी दाखिली नाकामियों को खारजी मामलात से मंसूब करने की एक और कोशिश है। जनाब जायसवाल ने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के तई भारत की हिमायत का इदा किया। 79वीं बरतानवी अकेडमी फिल्म अवार्ड में, जिन्हें बैफ्टा के नाम से भी जाना जाता है, वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को गलबा हासिल रहा। इस फिल्म ने बेहतरीन फिल्म समेत 6 अवार्ड हासिल किए हैं। इस फिल्म के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने बेहतरीन एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी हासिल किया। उन्होंने इस एजाज को आजहानी प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रिट एडम सोमनर के नाम वक्फ किया। जेसी बकली को हेमनेट फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार करार दिया गया, जबकि रॉबर्ट अरामाया को बरतानवी भारतीय फिल्म आई स्वेयर पर बेहतरीन अदाकार का खिताब दिया गया है। बैफ्टा में भारतीय फिल्म बूंग ने बच्चों और खानदान की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हासिल किया है। बूंग एक मणिपुरी फिल्म है जिसमें गुगुन किपजेन और बाला हिजम ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इस फिल्म का मुकाबला लीलो एंड स्टिच, आर्को और जूट्रोपोलिस 2 फिल्मों से था। امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران دونوں ملک 26 فروری کو اپنے نیوکلیائی مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے. تفصیل ہمارے نانگہ سے.
امکان ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات کی میز پر امریکہ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف کے روبرو ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ سفارتی حل تک پہنچنے کا یہ اچھا موقع ہے. تاہم ایران نے اپنے میزائل ذخیرے یا اس کی علاقائی درپردہ تنظیموں پر کسی بھی مذاکرات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ صرف اپنے نیوکلیائی پروگرام پر بات چیت کرے گا. دونوں فریق اس سے پہلے دو مرتبہ مل چکے ہیں. پہلی ملاقات عمان میں ہوئی جبکہ دوسری ملاقات 17 فروری کو جنیوا میں ہوئی. اس دوران فریقین نے ممکنہ سمجھوتے کے وسیع تر رہنما نظریات سے اتفاق کیا. تنازع کا مرکزی موضوع یورینیم کی افزودگی ہے اور امریکہ اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ ایران نیوکلیائی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کر پائے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم افزودگی اس کا خود مختاری حق ہے. مشرق وسطی میں کئی برسوں سے امریکہ کی سب سے بڑی فوجی موجودگی برقرار ہے اور صدر ٹرمپ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سفارتکاری ناکافی ہوتی ہے تو انہیں فوجی کارروائی کے متبادل بھی حاصل رہیں گے. ایران میں تازہ بے چینی کے پس منظر میں نیوکلیائی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے کے آخری دنوں میں تہران میں یونیورسٹی طلبہ نے کیمپسز میں احتجاج کیے. جنوری کے مہینے میں سخت ترین کارروائیوں کے بعد یہ اپنی طرز کے پہلے بڑے مظاہرے تھے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی.
امریکہ کے خفیہ محکمے نے ایک مسلح شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس نے فلوریڈا میں پام بیچ کے مقام پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میر ا لیگو رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی. البتہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ اس وقت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں تھے. اس شخص کی شناخت 21 سالہ آسٹن ٹکر کے طور پر ہوئی ہے جو نارتھ کیرولینا کے شہر کیمرون سے تعلق رکھتا ہے. مردوں کے آئی سی سی T20 کرکٹ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو سپر 8 مقابلے میں 76 رن سے ہرا دیا. یہ میچ کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 187 رن بنائے. ڈیوڈ ملر نے 35 گیندوں میں 63 رن اور ٹرسٹن اسٹب نے 24 گیندوں میں شاندار 44 رن اسکور کیے. جواب میں میزبان بھارتی ٹیم 18 اوورز اور 5 گیندوں میں 111 رن ہی بنا سکی. بھارت کی طرف سے شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 43 رن اسکور کیے. آج سپر 8 کے گروپ 1 کے میچ میں زمبابوے کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. یہ میچ شام 7 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران اوڈیشا اور انڈمان و نکوبار جزائر میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے. محکمے نے آج چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ودربھ، آسام اور میگھالیہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ کسان انّ داتا ہی نہیں بلکہ زمین کے حقیقی محافظ بھی ہیں. جبکہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے تعلق سے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا اس میدان میں بھارت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گی. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، انتخابی کمیشن 27 سال بعد ریاست کے انتخابی اداروں کے ساتھ گول میز کانفرنس کرے گا تاکہ متعلقہ قانونی فریم ورک کو بہتر سے بہترین کیا جا سکے. پاکستان سے وابستہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے کئی افراد کو دلی پولیس نے کیا گرفتار، مزید تفتیش جاری. اس خبر کو روزنامہ پرتاب نے صفحے اول پر جگہ دی ہے.
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنی مسلسل دوستی کی قدر کرتا ہے جو اعتماد، اختراع اور امن و ترقی کے تئیں مشترکہ عزم پر مبنی ہے. آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں راجا جی اتسو منایا جا رہا ہے. مہاراشٹر سرکار نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کو حکم دیں جس میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ہلاک ہو گئے تھے. بھارت نے افغان علاقے پر پاکستان کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے جن میں خواتین اور بچوں سمیت کئی شہری ہلاک ہوئے ہیں. ایران اور امریکہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو جنیوا میں نیوکلیئر سے متعلق اپنی بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اور آئی سی سی مردوں کے T20 کرکٹ عالمی کپ میں احمد آباد میں سپر 8 میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 76 رن سے شکست دے دی. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.